मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 दिसंबर 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग भावना पर बात कर रहे हैं और भावना पर बात करते हुए मैंने कल आप सबके सामने एक सच्चा उदाहरण पेश किया था जिससे हम लोग रूबरू होते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपने कल की मेरी बातों पर कुछ न कुछ विचार तो जरूर किया होगा। यहां मैं अपनी ओर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कल में जो मूल तत्व था, यानी कि कल जो मैंने आप सबसे बात कही थी, उसमें जो मूल तत्व जब आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा कि वह धर्म का था, क्योंकि उसमें ईश्वर की बात थी, ब्रह्म की बात थी। कभी कभी समझने में हमसे थोड़ी सी भूल हो जाती है। भूल ये हो जाती है कि हम धर्म को और भावना को दोनों को अलग अलग करके देखने लगते हैं, जबकि सच यह है कि भावनाओं का अतिरेक, या यूं कह लीजिए कि भावनाओं का बहुत ही शुद्धतम रूप, बिल्कुल प्योरिफाइड फॉर्म्स ऑफ इमोशन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन ही धर्म होता है। और यदि हमारे इमोशंस प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचने लगते हैं, बिल्कुल विशुद्धता तक ऊपर उठने लगते हैं, उसे ही हम कहते हैं आध्यात्मिकता। इसलिए कल जो मैंने बात कही थी उसे आप सीधे सीधे केवल धर्म से जोड़कर न देखें, बेसिकली उसकी जो शुरुआत होती है वह भावनाओं से ही होती है। कैसे भावनाओं से शुरुआत होती है, आइए चलिए इसे समझने के लिए एक और उदाहरण का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आप एक कलाकार के घर जाते हैं उसकी कलाओं को देखने की, कैसे वो कलाएं बनाता है, कैसे वो मूर्तियां बनाता है। आप देख रहे हैं कि वो मूर्तियां बना रहा है और बहुत बड़ा सा खुला स्थान है, तो वहां पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ पत्थर आधे तराशे हुए हैं, कुछ पत्थरों को वो तराश रहा है, कहीं किसी का हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पैर पड़ा हुआ है, कहीं खंडित सिर पड़ा हुआ है, इस तरह से ढेर सारी वहां अनगढ़ मूर्तियां पड़ी हुई हैं। कुछ मूर्तियां बिल्कुल पूरी होने के करीब हैं और कुछ मूर्तियां बिल्कुल पूरी हो गई हैं, और पूरी जो मूर्तियां हो गई हैं उन मूर्तियों को इस कलाकार ने अपने बकायदे शोरूम में सजा दिया है, राइट? तो आप शुरुआत करते हैं उस स्थान से जहां वो मूर्तियां बना रहा है ना, वहां धूल उड़ रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप उन सबको देख करके थोड़े से विचलित से भी होते हैं, आपको लगता है यार कि यहां से हटो भागो, है ना, ये अच्छी जगह नहीं है। जब आप खंडित मूर्तियों को देखते हैं तो मन थोड़ा सा खराब सा भी होता है कि यार ये खंडित मूर्तियां, इसमें तो कोई सौंदर्य ही नहीं है। इसके बाद फिर आप शोरूम में आ जाते हैं। अब आप शोरूम में मूर्तियां देख रहे हैं, ये पूरी मूर्तियां हैं, यानी कि जो पूरी हो चुकी हैं, अपने सौंदर्य के साथ वो मूर्तियां वहां मौजूद हैं। दरअसल आपको एक इसमें से मूर्ति खरीदनी है, आपने एक मंदिर बना रखा है और आपको उस मंदिर में स्थापना के लिए एक मूर्ति चाहिए। अब आप जो सेल्समैन है उसके साथ, अब ध्यान दीजिएगा, जो सेल्समैन है उसके साथ अब आप मूर्तियों का मुआयना लेते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है, ये मूर्ति कितने की है? वो कहता है कि साहब ये 11,000 की है। तो आप पूछते हैं कि 11,000 की क्यों है भाई, इसमें ऐसी क्या बात है? तो फिर वो आपको डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब वो किस तरीके से करता है कि अरे साहब ये इस स्टोन का बना हुआ है और ये स्टोन यहां से मंगाया गया है और ये बड़ा मजबूत स्टोन होता है, अगर इसे आप टक्कर भी मार देंगे तो ये स्टोन टूटेगा नहीं, ये स्टोन चटकेगा नहीं, इसलिए इसकी कीमत 11,000 रुपए है। इसके बाद आप दूसरी मूर्ति के सामने जाते हैं, वो कहता है कि इसकी कीमत 21,000 रुपए है। अरे भैया, इसकी 21,000 रुपए कीमत कैसे हो गई, इसमें ऐसा क्या है, ये तो उससे छोटी दिख रही है। फिर आप फिर से वो स्टोन की कीमत बताते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं आप देखिए कि इसमें कितनी बारीक कारीगरी की गई, आप देखिए उस मूर्तियों में आपने बाल देखे होंगे तो बाल इतने सारे नहीं थे, लेकिन इसमें देखिए कि बाल कितने बारीक से हैं, इसमें देखिए कि इसकी पलकें, देखिए पलकें कितनी बारीक बारीक बनाई गई हैं, आप इन कपड़ों का मोड़ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से फोल्ड दिखाए गए हैं, ये मूर्ति उस कलाकार ने बनाई है, इसलिए इसकी कीमत 21,000 रुपए है। अब इस तरह से आप ढेर सारी मूर्तियों का मुआयना लेते हैं और मुआयना लेने के बाद आप उसमें से एक मूर्ति सेलेक्ट करते हैं। आपने सेलेक्ट की 21,000 रुपए वाली मूर्ति जो उसने बताई थी, अब आप मोल भाव करते हैं, आप 21,000 में नहीं खरीदते, आप कहते कि नहीं नहीं भाई ये तो 21,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है यार, मैं तो इसके तुमको 14,000 दे सकूंगा। अरे बोले साहब आप 14,000 में कहीं आपको ऐसी मूर्ति मिलेगी, आप वो वाली मूर्ति ले लीजिए, चलिए वो 11,000 की है ना वो मैं आपको 9,000 में लगा दूंगा, लेकिन साहब ये तो 14,000 में नहीं मिलेगी आपको। तो आप कहते हैं भैया ठीक है 15,000 ले लो, तो बोले नहीं साहब 15,000 में ले दे करके आप देखिए, वो अपनी बात रखता है, चाहे साहब आप 21,000 नहीं तो चलिए आप 20,000 तो दे ही दीजिए, चलिए अब आप अपने लोग हैं अपने जान पहचान के हैं, अब आपके लिए थोड़ा समय और कम कर देता हूँ, 19,000 रुपये आप दे दीजिए, अब इससे कम तो नहीं हो सकेगा। आप जिद करते हैं नहीं नहीं भाई अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं होता है, तुमने तो 2,000 कम किए, तो चलो अब ऐसा करो कि बीच बीच का कर लेते हैं 18,000 रुपये में फाइनल करो। और इस तरीके से वह मूर्ति आप 18,000 रुपये में लेकर के आते हैं। दोस्तों ये मूर्ति है राइट। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैं अब आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में धर्म की कोई चर्चा हुई, ईश्वर की शक्ति की कोई चर्चा हुई? क्या दुकानदार ने आपको यह बताया, ये मैं केवल अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्या दुकानदार अपनी मूर्ति को बेचते समय यह कहता है कि नहीं नहीं साहब देखिए जो ये मूर्ति है ना इसमें ब्रह्म की शक्ति ज्यादा है, ये आपकी इच्छाओं को ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकेगी बजाय इसके, और ये जो मूर्ति है ना 51,000 वाली इसमें तो इतना जादू है कि आप मांगिए और आपको तुरंत मिलेगा, समझ लीजिए कि ये कल्प वृक्ष है। क्या वो कुछ इस तरह की बातें करता है, या कि इस तरह की बातें करता है कि ये जो मूर्ति है साहब ये इस ब्राह्मण ने बनाई है, या ये मूर्ति इस क्षत्रिय ने बनाई है, या इस ये मूर्ति जो है उस संत ने बनाई है, कुछ ऐसी बात करता है? मतलब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको धर्म कहीं भी दिखाई नहीं देगा, आपको यहां तक कि इमोशंस भी कहीं दिखाई नहीं देंगे, जो दिखाई दे रहा है वह आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र दिखाई दे रहा है, मोल तोल, वस्तु की कीमत, वस्तु की गुणवत्ता, कलाकारी, मेहनत, ताकि उसकी जो कीमत है उसे वो जस्टिफाई कर सके। और आप भी जो जस्टिफाई हो रहे हैं, याद रखिए आप भी जो जस्टिफाई हो रहे हैं, यानी कि उस वस्तु को उस मूर्ति को खरीदने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, वो इस आधार पर नहीं कि इसमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति है, सिर्फ इस आधार पर कि भैया मैं जो कीमत दे रहा हूं ये चीज ये मूर्ति उस कीमत के लायक है या नहीं है, बस केवल इतना ही। और अब आप उस मूर्ति को अपने घर ले आते हैं, ठीक है घर के बाहर मूर्ति रखी हुई है ठीक है, इसके बाद आप मुहूर्त निकलवाते हैं, जो भी है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो मूर्ति मंदिर में रख दी जाती है। अब जब वो मूर्ति मंदिर में रख दी गई है तो अब वह क्या है? तो दोस्तों पत्थर की बात मैंने कल के भी अपने उदाहरण में की थी, और पत्थर भी यहां है, लेकिन यहां इसे मैंने थोड़ी सी प्रक्रिया के तहत आपके सामने रखा है। अब आप देखें कि वो मूर्ति जो बिल्कुल एक मोल भाव की वस्तु थी, यहां आकर के वो क्या हो जाती है और यह क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो आप सही मायने में भावनाओं की गहराइयों को समझ पाएंगे, और गहराइयों के साथ ही साथ जैसे एक हीरा होता है ना डायमंड, आप कभी डायमंड को ध्यान से देखिए तो ऊपर से तो आपको एक ही कलर का दिखाई देगा, लेकिन उससे अलग अलग रंग की छटाएं निकलती जाती हैं, ठीक इसी तरह से भावनाओं के साथ भी होता है। जब आप भावनाओं को थोड़ा सा गहराई से देखने के बाद जब महसूस करने के स्तर पर आएंगे तब आपको उसमें से छटाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा इस पर भी आप विचार करें, 2 दिनों हैं आपके पास विचार करने के लिए, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अपना ख्याल रखें, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल करें। दोस्तों नमस्कार।